कि जीवन के विषय में बताया गया है रामायण में कि सब कुछ था उनके पास और उनको ये जो नाम मिला था दशरथ, दशरथ का अर्थ कि वो इतने शक्तिशाली राजा कि एक साथ वो 10 रथों और कौन से रथ, महारथों को या महारथियों को, 10 महारथियों को एक साथ वो झेल सकते थे युद्ध में। अलोन ही कुड हैंडल 10 महारथीज। तो ऐसी उनकी शक्ति, ऐसा उनका बल, ऐसा ऐश्वर्य, और ऐसे रघुकुल में, इक्ष्वाकुकुल में महाराज दशरथ जो राजा हुए, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना ऐश्वर्य, इतनी शक्ति, कला, भक्ति, सब कुछ होने के बावजूद उन्हें एक पुत्र नहीं था, एक भी पुत्र नहीं था। सोचिए, इतने बड़े राजा और एक भी पुत्र नहीं। तो गोविंद राज वो महाराज दशरथ के इस उदाहरण से पहली शिक्षा हमें दे रहे हैं कि भौतिक संसार का स्वरूप क्या है। महाराज दशरथ सिखा रहे हैं, भौतिक संसार का स्वरूप ये है कि चाहे आपके अंदर कितनी भी कलाएं हों, कितना भी ऐश्वर्य हो, कितनी भी शक्ति हो, कितना भी बल हो, कितने भी गुण हो, भौतिक संसार का स्वरूप है कि इन सब के बाद शब्द आएगा लेकिन, किंतु, या अंग्रेजी में बट, अ बिग बट, BUT। दिस इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। गोविंद राज जी से, यू मे हैव ऑल द स्किल्स इन ऑपुलेंसेस बट ऑलवेज देर इज अ बट। तो वो उदाहरण देते हैं चित्रकेतु महाराज का, श्रीमद् भागवत से। चित्रकेतु महाराज की भी वैसी स्थिति थी। अब देखिए, चित्रकेतु महाराज, यहां तो महाराज दशरथ के आगे चलकर उन्होंने बहुत से अन्य विवाह किए। इस समय तो उनकी 3 पटरानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ये बताया गया है कि महाराज दशरथ ने 350 रानियों के साथ विवाह किया, लेकिन उसका कारण कुछ ऐसा था कि उस समय परशुराम जी वो क्षत्रियों के ऊपर बहुत ज्यादा क्रोधित थे और वो एक प्रोजेक्ट पर निकले हुए थे, सारे क्षत्रियों को खत्म करना है, वाइपिंग आउट ऑल क्षत्रियस फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस प्लैनेट, ये उनका प्रोजेक्ट था, ये परशुराम जी का मिशन था। लेकिन उनका कंडीशन, नियम ये था कि वो क्षत्रिय राजा जो कि विवाह मंडप में बैठा है उसको वो नहीं मारते थे। तो महाराज दशरथ को जब भी समाचार मिलता कि परशुराम जी आ रहे हैं तो तुरंत कार्ड छपते और विवाह मंडप सजता। तो इस प्रकार से महाराज दशरथ बचे रहे, लेकिन लेकिन उन्हें 350 बार शादी करनी पड़ी। हालांकि उस समय के राजा वो इतने सक्षम भी थे, आजकल तो केवल उस दिन राजा की तरह घोड़े पे बिठाया जाता है। लेकिन उसे भी पता नहीं होता कि एक दिन के लिए जो राजा बन रहा है फिर दूसरे दिन से क्या बनने वाला है वो। तो महाराज दशरथ, हाँ, चित्रकेतु महाराज, चित्रकेतु महाराज का उदाहरण देते हैं वो कि महाराज दशरथ के तो 350 पटरानियां थी, चित्रकेतु महाराज के कितने थे? 1 करोड़। सही रूप से करोड़पति थे। करोड़ रानियों के पति करोड़पति। तो चित्रकेतु महाराज की 1 करोड़ पत्नियां। तो सोचिए क्या ऐश्वर्य होगा कि 1 करोड़ पत्नियों को रोज लंच ब्रेकफास्ट डिनर खिलाना। सोचो कितना खर्चा उसमें चला जाएगा, उसका बिल, एक दिन का बिल आप कल्पना कीजिए। और ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी, ये पटरानियां थी। तो सोचो आगे का उनका मेकअप और कॉस्मेटिक्स, कितनी साड़ियां और एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी, पता नहीं कितनी बार मनाना पड़ता होगा महाराज चित्रकेतु को। तो कितना ऐश्वर्य होगा महाराज चित्रकेतु का। तो गोविंदराज कहते हैं इतना ऐश्वर्य होने के बावजूद लेकिन उनको भी पुत्र नहीं था। फिर उदाहरण देते हैं हिरण्यकशिपु का। अब हिरण्यकशिपु जैसा खूंखार राजा, महाराज चित्रकेतु फिर भी बहुत ही भगवान के भक्त और सुशील टाइप के, ये आतंकवादी, ये हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु जिसने ऐसा आतंक फैलाया हुआ था कि सारे देवतागण वो हिरण्यकशिपु से थर थर कांपते, और उन्होंने अपना देवलोक त्याग दिया था, हिरण्यकशिपु की सेवा में सभी लगे हुए थे, और वो भी सब मीनियल सर्विस हिरण्यकशिपु। तो ये हिरण्यकशिपु का उदाहरण देते हैं गोविंदराज कि ऐसा ऐश्वर्य हिरण्यकशिपु का, स इत्थम निर्जीत काकुब एकराट विषयान प्रियान, जो विषय उसको प्रिय होता वो केवल वो इशारे करने मात्र से उसके सामने वो विषय वस्तु उपलब्ध हो जाती उसे, न तृप्यत फिर भी, लेकिन पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में सभी हिरण्यकशिपु के अधीन थे, एक व्यक्ति को छोड़कर, प्रह्लाद, उसी का बेटा। तो ये उदाहरण दिया है कि कई बार आपके जितने सारे ऐश्वर्य होंगे, जो सबसे निकटतम वस्तु या व्यक्ति आपका होगा वही वो लेकिन क्रिएट करेगा आपके जीवन में, वही वो बट और किंतु क्रिएट करेगा। जैसे हिरण्यकशिपु के जीवन में सभी दूर दूर तक थर थर कांपते थे, सबसे निकट उसका 5 वर्षीय बालक पुत्र प्रहलाद थरथर का, वो प्रहलाद से वो डरता था हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु को अंदर से डर था प्रहलाद से। क्यों? क्योंकि प्रहलाद निडर थे, क्योंकि प्रहलाद के अंदर कोई डर नहीं था, इसलिए हिरण्यकशिपु के अंदर प्रहलाद की निडरता ने डर डाल दिया था। तो ये हिरण्यकशिपु का उदाहरण कि सब कुछ, सारा ऐश्वर्य लेकिन प्रहलाद, चित्रकेतु सारा ऐश्वर्य लेकिन पुत्र नहीं, महाराज दशरथ सारा ऐश्वर्य लेकिन पुत्र नहीं। अब वो इस भौतिक संसार के कुछ उदाहरण देते हैं, बहुत उपयुक्त उदाहरण है, सीजन चल रहा है आम का, तो आम का उदाहरण वो दिए हैं कि जैसे आम का फल है, फलों का राजा, हम सब राजाओं की चर्चा कर रहे हैं तो फलों का भी राजा आम, जैसे राजा दशरथ, राजा हिरण्यकशिपु, राजा आम। तो वो आम का उदाहरण देते हैं कि ये जो आम फल है, सभी फलों में जो राजा है, लेकिन जब इसको कोई खाने जाता है इस भौतिक संसार में, तो दो लेकिन आते हैं, एक तो बाहर छिलका होता है और अंदर गुठली। और कलयुग में कलयुग का एक लक्षण बताया गया है कि कलयुग में ये सारे जो फल हैं, ये धीरे धीरे ये फल के अंदर परिवर्तन क्या दिखाई देगा कलयुग में, कि जो छिलका है वो मोटा होता जाएगा और अंदर का बीज भी मोटा होता जाएगा, और जो बीज में खाने की जो वो पल्प है वो इतना सा ही रह जाएगा। ये कलयुग का लक्षण है, भविष्य पुराण में इसका वर्णन है, दैट द फ्रूट्स विल हैव थिकर स्किन एंड थिकर सीड्स एंड वेरी लेस पल्प। ये कलयुग का लक्षण। तो अनुभव किया होगा, आम खाने जाते हैं आप तो उसका कुछ एक चौथाई तो छिलके में ही चला जाता है, उसको भी कई लोग कलयुग में छोड़ते नहीं पूरा, कई लोग छिलके को भी खा लेते हैं, सुना मैंने ऐसे, क्योंकि एक तो आम इतने महंगे हैं तो फिर उसको भी वेस्ट क्यों किया जाए, और फिर अंदर वो गुठली इतनी बड़ी बड़ी तो उसके वजह से आधा वजन तो उसमें चला जाता है गुठली के वजह से। तो ये उदाहरण दिया है कि इस भौतिक संसार का स्वरूप ऐसा ही है। हां, प्रकृति आपको अल्फांसो आम देगी, ये नहीं कि आम नहीं मिलेगा आपको, आम मिलेगा, लेकिन आम के साथ गुठली और छिलका वो बाधा डालेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की एक लीला मायापुर में नवद्वीप में एक लीला स्थली है आम घाट, जहां चैतन्य महाप्रभु जब हरिनाम संकीर्तन अपने पार्षदों के साथ कर रहे थे तो हरिनाम संकीर्तन वो महीनों तक चल रहा था, केवल घंटों तक नहीं महीनों तक चल रहा था। तब सारे जो भक्त वो इतने व्याकुल हुए और चैतन्य महाप्रभु भी बिना कुछ खाए पिए हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, तो फिर चैतन्य महाप्रभु को उस भावावेश अवस्था से भक्तों ने पार्षदों ने ऐसे होश की अवस्था में लाया जहां पर वो देख सके कि भक्त कुछ खाए नहीं है इतने टाइम से। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर प्रकट किया एक ऐसा वृक्ष आम का जिसमें ऐसे आम तुरंत इंस्टेंट आम उगने लगे, न तो उनके ऊपर कोई छिलका था न अंदर बीज, कल्पना कीजिए ऐसे आम चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा भी ऐसी है उन आम की तरह, कोई छिलका नहीं कोई बीज नहीं, ओनली प्योर नेक्टर। लेकिन हमारा डिस्कशन लेकिन के ऊपर, कि इस भौतिक संसार में चैतन्य महाप्रभु की कृपा तो है लेकिन हम अपने कितने जन्मों से पहले से ही केवल छिलका और गुठली लेके घूम रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण प्रेम का आम दिए हैं इसका हम डिस्क्रिप्शन किए, लेकिन फिर भी हम उसको छोड़कर इस भौतिक संसार में कितने वर्षों पुराने चूसी हुई गुठली और छिलके को अपने साथ रख रख के रख रख के उसको बाहर निकाल निकाल के उसी को चूस रहे हैं, पुनः पुनः चर्वित चर्वणा आना, यह हमारा दुर्भाग्य। तो ये उदाहरण दिया है आम और आम के छिलके और गुठली का। फिर वो उदाहरण देते हैं समुद्र का, कि समुद्र कितना बड़ा जलाशय है। आप देखिए ये गर्मी के मौसम में आप यदि समुद्र के तट पर जाओ तो वहां पर जो समीर बहती है, जो हवा बहती है, वो कितनी शीतल होती है। लोग समुद्र के तट पर बंगले बनाना चाहते हैं, हाउस बाय द सी। मुंबई में क्या रेट्स हैं समुद्र के तट पर जो ये प्रॉपर्टीज हैं उनकी। तो समुद्र एक ऐसा जलाशय है जो इतना सुंदर दिखता है, इतना विशालकाय ये जल का समूह और इतना सुंदर दिखने वाला ये समुद्र, लेकिन जब आपको प्यास लगे तो इसकी एक बूंद भी किसी काम की नहीं है। तो हालांकि है इतना बड़ा ये समुद्र, लेकिन खारा जल, सारा जल कैसा है? खारा। तो ये है ये भौतिक संसार, कि सब कुछ बहुत बड़ा दिखता है, ऐश्वर्यशाली दिखता है, लेकिन उसके साथ है ये नमकीन खारा जल, उसके साथ है ये छिलके, ये गुठलियां, हर समय ये बट बट बट। जिसे राधा गोपीनाथ प्रभु अपने गीता कोर्स में ये एग्जाम्पल देते हैं, जब भी याद आए ये एग्जाम्पल, कि वो एक व्यक्ति से मिले मुंबई में, जो उनको बता रहा था कि कैसे वो अब मीरा रोड शिफ्ट हो गया है। पहले वो मुंबई में कहीं रहता होगा, तो अभी उसने खुद का मकान मीरा रोड में लिया है। तो वो डिस्क्राइब कर रहा था कि अब उसका जीवन कितना ज्यादा सुकून का हो गया है, कि मुझे अब वो लोकल ट्रेन में ट्रैवल नहीं करना पड़ता, क्योंकि मुझे नौकरी भी मीरा रोड में मिली है, घर भी मीरा रोड में है, और बच्चों का स्कूल भी मीरा रोड में है, और बाजार बस दो फरलांग दूर बाजार है। तो राधा गोपीनाथ प्रभु बता रहे थे कि वो जब ये सुन रहे थे तो उनको मन में लगा कि क्या हुआ, ये दुखालयम अशाश्वतम कब आने वाला है। तो वो बोले जा रहे हैं, माय जॉब इज इन मीरा रोड, माय हाउस इज इन मीरा रोड, चिल्ड्रन स्कूल्स आर इन मीरा रोड, द यू नो मार्केट इज जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट। तो ये वेट कर रहे थे बट कब आएगा बट। तो इतना पूरा लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया, सब अच्छी अच्छी चीजें, और फिर लास्ट में लास्ट लाइन जो थी, बट प्रभु जी मॉस्किटोस, द मॉस्किटोज ऑफ मीरा रोड आर डेडली। हाँ, तो वो कन्विंस हो गए प्रभु जी की, हाँ बट आ गया, कन्फर्म्ड भगवत गीता एज इट इज। तो ये आध्यात्मिक ताप, अधिदैविक ताप, अधिभौतिक ताप, ये सब क्या है? ये अलग अलग तरीके हैं भौतिक प्रकृति हमारे जीवन में लेकिन ऐड करने के लिए, किंतु परंतु बट ये सब। श्रील प्रभुपाद हृदयानंद महाराज के साथ मेक्सिको गए, तो हृदयानंद महाराज वो बताते हैं कि वहां पर हृदयानंद महाराज स्पैनिश जानते हैं, जो वहां की भाषा है मेक्सिको की। तो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले प्रभुपाद और महाराज, तो एक बड़ा सा ड्रम जैसा था, उसके ऊपर स्पैनिश में कुछ लिखा हुआ था। तो प्रभुपाद ने हृदयानंद महाराज से पूछा कि क्या लिखा है उसमें। तो महाराज ने प्रभुपाद को बताया, स्पैनिश पे लिखा है उसके ऊपर, थ्रो ऑल योर गार्बेज हियर, अपना कचरा यहां फेंके। तो प्रभुपाद ने कहा, सो देन वी हैव टू थ्रो द एंटायर मटेरियल वर्ल्ड। तो पूरा भौतिक संसार फेंकना पड़ेगा फिर इसके अंदर। तो इसका अर्थ क्या है कि जिसको हम इतना सजा रहे हैं सब कुछ, प्रभुपाद के अनुसार कूड़ा करकट है। और फिर प्रभुपाद ने देखा वो जो बड़ा गार्बेज कैन था, एक चूहा मंडरा रहा था, यहां ऊपर बाहर अंदर बाहर जा रहा था चूहा, तो उनका तीर्थ स्थान चूहों का, कौओं का, वो तीर्थ स्थान बताया गया कि वहीं पे सब कुछ उनका मॉर्निंग इवनिंग नाइट प्रोग्राम चलता रहता है। तो चूहा अंदर बाहर वो कूड़ादान के, और फिर प्रभुपाद के सामने म्युनिसिपैलिटी की ट्रक आई, और म्युनिसिपैलिटी की ट्रक आई, और वो जो पूरा कचरा उस कूड़ेदान में था, चूहे के साथ वो म्युनिसिपैलिटी ट्रक ने अपने अंदर डाल दिया, और वो बड़ा ट्रैश कॉम्पैक्टर था, तो पूरा कूड़ा उसके अंदर पिचक गया। तो प्रभुपाद ने कहा सी दिस मटीरियल वर्ल्ड इज लाइक गार्बेज एंड हु आर वी लाइक दैट रैट जस्ट फ्रॉम दिस गार्बेज टू दैट गार्बेज ये योनी से उस योनी बस कहां पर कौन सी योनी में अच्छा कचरा मिलेगा खाने के लिए और ये म्युनिसिपैलिटी ट्रक कौन है ये काल टाइम फैक्टर तो हाँ जब तक म्युनिसिपैलिटी ट्रक नहीं आती तब तक हम बहुत मजे करते हैं और जैसे ही म्युनिसिपैलिटी ट्रक आया फिर सारा बेड़ा गर्ग तो यहां पर महाराज दशरथ का उदाहरण गोविंद राज देते हैं कि सारा ऐश्वर्य लेकिन एक ब्लैंक था है ना हमने एग्जाम्स में फिल इन द ब्लैंक्स तो ये बताया गया है वो कहते हैं कि हमारे जीवन में केवल एक ही व्यक्ति हमारे ब्लैंक को फिल कर सकते हैं और एक ब्लैंक नहीं कितने कलयुग में तो ब्लैंक्स बढ़ते जा रहे हैं इसलिए प्लूरल में कहा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स कितने सारे ब्लैंक्स हैं कितने लेकिन किंतु परंतु ये नहीं वो नहीं बढ़ते जा रहे महाराज दशरथ का तो एक ही लेकिन था पुत्र नहीं कलयुग में तो कितने सारे हैं हाँ कलयुग का एक और लक्षण है बहुपुत्र का देही कि बहुत सारे बच्चे पैदा करना ये कलयुग का एक लक्षण है और उससे परेशान होना फिर तो ये जो ब्लैंक है ये ब्लैंक की भरपाई केवल राम कर सकते हैं जैसे महाराज दशरथ के जीवन में द ओनली पर्सन हु कैन फुल्ली एंड सैटिस्फैक्टरली फिल अवर ब्लैंक इज लॉर्ड राम तो ये पहला लेसन महाराज दशरथ के उदाहरण को हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए दिया गया है दूसरा लेसन इसके साथ साथ महाराज दशरथ को एक शाप भी मिला था अब देखिए शाप क्या था श्रवण कुमार की कथा हम जानते हैं श्रवण कुमार जो कि अपने माता पिता के ऐसे अनन्य भक्त हुए कि उनके पिता अंधे थे माता भी अंधी थी क्या दोनों अंधे थे तो दोनों अंधे थे शांताव और ज्ञानवती शायद ये दो नाम शांताव हाँ शांताव और ज्ञानवती ये श्रवण कुमार के माता पिता तो श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए वो कैसे ले गए पूरे भारत ब्रह्मण तीर्थ यात्रा के लिए टोकरी में डालकर अपने कंधे पर उठाकर श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा कराई अपने माता पिता कल हम चर्चा कर रहे थे आजकल बच्चे माँ बाप को कुंभ मेला में ले जाते हैं कहते हैं तीर्थ यात्रा आपको कराएंगे और वहां छोड़ के आ जाते हैं फिर ये कलयुग का एक और लक्षण बताया गया तो श्रवण कुमार अपने माता पिता को टोकरी में उठा के कंधे पर एक तरफ उनके पिता एक तरफ माता और कंधे पर वो दो टोकरी उठाकर ऐसे तीर्थ यात्रा करा रहे थे जय श्री राधा मदन गोपाल भगवान की तो हुआ क्या कि महाराज दशरथ वो शिकार के लिए निकले हुए थे एक समय और उन्हें किसी पशु की आवाज सुनाई दी झाड़ियों में तो उन्होंने अपना तीर चला दिया और वो वहां पर श्रवण कुमार पानी भर रहे थे अपने माता पिता के लिए तो जाकर महाराज दशरथ ने जब देखा कि किसे तीर मार दिया है उन्हें तो श्रवण कुमार वो महाराज दशरथ से कहते हैं कि मैं पानी लेने के लिए आया था मेरे माता पिता के लिए तो आप ले जाइए मेरी ओर से अब मुझे तो आपने खत्म कर दिया है आपके तीर से तो महाराज दशरथ इतना दुखित हुए लेकिन शांताव इन्होंने शाप दे दिया महाराज दशरथ को कि जिस प्रकार से मुझे तुमने पुत्र वियोग में डाला है, उसी प्रकार से तुम्हें भी पुत्र वियोग होगा और तुम्हारी भी मृत्यु पुत्र वियोग के वजह से होगी। तो ये शाप महाराज दशरथ को मिला हुआ था। तो ये दूसरा लेसन ये है कि ऐसे शाप के बावजूद महाराज दशरथ पुत्र चाहते थे। अब यदि हम में से कोई होता तो अरे पुत्री पैदा क्यों करें, पुत्री वियोग की वजह से मरने वाला हूं मैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, पुत्री क्यों पैदा करें। लेकिन महाराज दशरथ का कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं था। महाराज दशरथ ये उनका उदाहरण दिया गया है, ये दूसरी शिक्षा उनके चरित्र से, कि वो हार नहीं माने, हालांकि शापित लेकिन हार नहीं माने। जैसे कि वसुदेव और देवकी का उदाहरण, तो गोविंदराज वसुदेव देवकी का उदाहरण देते हैं कि वसुदेव और देवकी उनके 6 बच्चे मारे गए उनके सामने, आंखों के सामने कंस ने मारा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। कल्पना कीजिए कि भगवान उनके तपस्या से प्रसन्न हुए, देवकी वसुदेव की तपस्या से प्रसन्न हुए और आने का निर्णय किया उनके पुत्र के रूप में, लेकिन 8वां पुत्र और उसके पहले 6 उनके पुत्रों की हत्या उनके ही सामने, आंखों के सामने। तो ये जो एक लेसन है, नेवर टू गिव अप, ये वसुदेव और देवकी महाराज दशरथ से हम सीख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद भी जब इस्कॉन की स्थापना प्रभुपाद ने की और ऐसे ऐसे देशों में जगहों में जाकर इस्कॉन के मंदिर खोलने का निर्णय उन्होंने किया, जैसे कि जुहू में, ये जुहू का जो मंदिर है आज जो इतना भव्य मंदिर हमें दिखता है राधा रास बिहारी का, श्रील प्रभुपाद ने जो अथक प्रयास, और उस समय एक भी व्यक्ति नहीं था जो श्री प्रभुपाद को प्रोत्साहित कर रहा था कि वो प्रॉपर्टी आप लो और वहां मंदिर बनाओ, सब अगेंस्ट। यहां तक कि प्रभुपाद के शिष्य प्रभुपाद के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि हम और कहीं पे मंदिर आपके लिए बांध लेंगे, यहां पर इतना कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये मिस्टर एन ने इतने कॉम्प्लिकेशंस करके रखे हैं और इतना ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी और यहां पे षड्यंत्र रचा जा रहा है, चीटिंग हो रहा है। प्रभुपाद ने कहा नहीं, यहीं पे मंदिर बनेगा, क्योंकि मैंने वो विदेश जाने से पहले प्रभुपाद ने स्पॉट कर लिया था कि यहां पे मंदिर बनाऊंगा मैं आने के बाद। सोचो प्रभुपाद का डिटर्मिनेशन, अमेरिका जाने से पहले जुहू प्रॉपर्टी को स्पॉट किया था प्रभुपाद। नेवर टू गिव अप, ये प्रभुपाद का डिटर्मिनेशन। वृंदावन, मायापुर, ये दोनों जगहों पर भी कृष्ण बलराम मंदिर जो निर्माण किया और मायापुर, दोनों जगहों पर सबका ऑपोजिशन था कि कौन आएगा यहां पर। जुहू में भी उस समय कोई वहां पर बस्ती नहीं थी, मायापुर में रमन रेती, वृंदावन में कोई बस्ती नहीं थी, सभी यही सबसे बड़ी सबकी शंका थी कि कौन यहां पर दर्शन के लिए आएगा। और आज जुहू में आप देखें जाकर तो वहां का कैलकुलेशन ये है, एवरी मिनट एन एवरेज ऑफ 50 पीपल आर कमिंग फॉर दर्शन, एवरी मिनट। श्रील प्रभुपाद की जय, ये उनका जो डिटर्मिनेशन नॉट टू गिव अप। एक और उदाहरण है पांडवों का, कि पांडवों के जीवन में कितने दुख, कितनी कठिनाइयां बचपन से, और बहुत से दुख और कठिनाइयां भगवान श्री कृष्ण के निकट होने की वजह से, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से हार नहीं मानी और अंततः विजय उनकी ही हुई। तो ये सेकेंड लेसन, नेवर टू गिव अप। थर्ड लेसन कि ये नहीं कि महाराज दशरथ ने जब देखा कि मुझे पुत्र नहीं है और उसके साथ साथ मुझे शाप भी मिला हुआ है, तो मैं केवल अब प्रतीक्षा करूंगा, जो भगवान चाहेंगे वो होगा। नहीं, ही एक्टेड, उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। तो ये जो तीसरा लेसन है, टू काउंटरैक्ट वंस कर्मा वन शुड बी एक्टिव, ये महाराज दशरथ ने सिखाया। कि कई लोग कहते हैं ना कि अरे भाई जो नसीब में तकदीर में लिखा है वो तो जो जो जब जब होना है सो सो तब तब होगा, ऐसा बोलते हैं लोग। यहां पर महाराज दशरथ ने यज्ञ दान तप, ये जो तीन विधियां हैं और जिसके द्वारा उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ ये किया। तो कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, ब्रह्म संहिता में हम जब ये पढ़ते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से कर्माणि निर्दहति, दहन हो जाता है हमारे सारे पिछले कर्मों का, तो इसका अर्थ ये है कि ये नहीं कि केवल भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर अपने ब्रह्म संहिता की टीका में वो कहते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं कि हम केवल एक इंस्टीट्यूशन में जुड़ जाएं तो अपने आप कर्माणि निर्दहति होगा। नहीं, भक्ति भाजान, आपको भक्ति में लगना होगा। इसलिए हम अक्सर ये पॉइंट दोहराते हैं, इस्कॉन्स सक्सेस इज नॉट माय सक्सेस। कई बार हमको लगता होगा देखो इस्कॉन में कितना सक्सेसफुल हो रहा है सब कुछ, तो मैं इस्कॉन से जुड़ जाऊंगा तो फिर मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। नहीं, बहुत से प्लेन अमेरिका की ओर जा रहे होंगे, लेकिन आप उस प्लेन में घुसने का प्रयास करोगे तो चेकिंग होगा, आपका पासपोर्ट किधर है, वीजा किधर है, टिकट किधर है। आप बोलो अरे इतने लोग जा रहे हैं, मेरे को जाने में क्या प्रॉब्लम है, खड़े रह के चला जाऊंगा यार, मैं ज्यादा जगह नहीं लूंगा, मैं खड़े लेके, मैं कुछ खाऊंगा भी नहीं, मैं अपना टिफिन लेके आया। नहीं, तो हमको कई बार ऐसा लग रहा होगा इतने सारे डिवोटी चैंटिंग कर रहे हैं, कितने लोग भगवत धाम जाने वाले होंगे, मैं भी थोड़ा छुपके एक खड़े रह के चला जाऊंगा वैकुंठ विमान में। नहीं, प्रयास करना होगा, भक्ति भाजान कर्माणि निर्दहति। ओके, हमें हमारी साधना भक्ति से प्रयास करना है हमारे कर्मों का दहन करने के लिए, क्योंकि हम उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं कि भगवान हमें इतना प्रगत भक्त माने कि भगवान सब हमारे लिए करना प्रारंभ करें, हमारा वो स्तर नहीं आया है। तो इसलिए महाराज दशरथ अपने उदाहरण से सिखाए दैट हाउ वन शुड नॉट रिमेन पैसिव बट एक्टिव टू काउंटरैक्ट वंस कर्मा। फिर चौथा लेसन, चौथी शिक्षा, ये बहुत एक महत्वपूर्ण शिक्षा। अब महाराज दशरथ से गोविंदराज अपना केंद्र हटाकर अब वो जब यज्ञ पुरुष उत्पन्न होते हैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ से, तो वो पायसम का मटका लेकर प्रस्तुत होते हैं और इस पायसम को महाराज दशरथ देते हैं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को। तो यहां गोविंदराज अब फोकस डाल रहे हैं सुमित्रा के ऊपर। सुमित्रा किन की माता थी? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कैकेयी भरत की माता और कौशल्या प्रभु श्री राम की माता। तो सुमित्रा को जैसे ही पायसम मिला तो गोविंदराज कहते हैं कि सुमित्रा के मन में सबसे पहली इच्छा ये हुई कि मैं केवल कौशल्या और कैकेयी की दासी बनना चाहती हूं। वो पायसम खाते समय उनकी इच्छा यही थी कि मैं केवल इनकी सेविका बनना चाहती हूं। किनकी? कौशल्या और कई कई की, हालांकि उनका भी दर्जा बराबरी का था, वो भी एक पटरानी थी और मुख्य वो तीन पटरानियों में से एक थी, लेकिन वो पायसम खाते समय उनकी ये इच्छा हुई कि मैं केवल इनकी सेविका बनना चाहती हूं। इसलिए जब सुमित्रा के ये दो पुत्र पैदा हुए तो उनके मन में भी केवल यही इच्छा थी कि हम राम और भरत इनके सेवक बनना चाहते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि लक्ष्मण बने प्रभु श्री राम के सर्वेंट और शत्रुघ्न वो बने भरत के सर्वेंट। तो गोविंद राज ये हमें सिखा रहे हैं, सर्विस एटीट्यूड गिव्स बर्थ टू सर्विस एटीट्यूड, क्योंकि माता सुमित्रा के मन में ये सेवा भाव थी जिसके वजह से उनके पुत्र भी ऐसे सेवक बने। श्रील प्रभुपाद उन्होंने इस्कॉन की जब स्थापना की तो उन्होंने अपने स्वयं के उदाहरण से हम सबको सिखाया कि सेवा कैसे करनी चाहिए, अर्च विग्रह की सेवा कैसे करनी चाहिए, जप कैसे करना चाहिए, यहां तक कि प्रभुपाद एक सन्यासी लेकिन अपनी जो उनकी शिष्याएं थीं जो कि स्त्री के रूप में, उनके लिए साड़ियां लेकर आए और सिखाया साड़ी कैसे, उनको कौन सिखाएगा साड़ी कैसे पहनना है। तो सोचिए एक सन्यासी इस हद तक अपने सेवकों की सेवा में लगे हुए थे। हंसदूत प्रभु वो श्रील प्रभुपाद के पास आए एक दिन और उन्होंने कहा, प्रभुपाद ये जो बैक टू गॉडहेड मैगजीन है ये हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूट करने का आपने आदेश दिया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बेसमेंट में, मंदिर के बेसमेंट में ये बैक टू गॉडहेड मैगजीन ऐसी पड़ी हुई है, किसी ने स्टेपल नहीं किया है उसके मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह, कोई बाइंडिंग नहीं हुआ है ऐसे ही, तो डिस्ट्रीब्यूट करना तो दूर, उसको कोई बाइंडिंग करने के लिए और स्टेपल करने के लिए नहीं आ रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा क्यों, क्या कि सब लोग अपनी अपनी सेवा में बिजी हैं। तो प्रभुपाद ने कहा तो मुझे क्यों नहीं बताया। तो हम सुदूत प्रभु कहे आपको, हाँ अगर सभी लोग अपनी सेवा में बिजी हैं तो मुझे बताते, मैं उसको स्टेपल करता, चलो कहां पर है। तो हम सुदूत प्रभु एकदम घबरा गए। प्रभुपाद गए बेसमेंट में और प्रभुपाद हंसदूत प्रभु के साथ बैठकर दोनों पूरे बैक टू गॉडहेड को स्टेपल किया, बाइंड किया। और प्रभुपाद ने कहा कि जब भी जो भी सेवा हो, एम आई नॉट इस्कॉन डिवोटी, जो भी सेवा हो आप अगर कोई नहीं मिले तो मुझे बताओ। तो जब हंसदूत प्रभु बता रहे थे कि प्रभुपाद का ऐसा उदाहरण उन्होंने देखा तो हमारे अंदर वो सर्विस एटीट्यूड एकदम शुद्ध तरीके से इंस्टॉल हुआ। प्रभुपाद इंस्टॉल्ड सर्विस एटीट्यूड विद इन अस इन अ वेरी वेरी स्ट्रांग एंड प्यूरिफाइड मैनर। जैसे कि सुमित्रा ने वो पायसम खाते समय वो सर्विस एटीट्यूड अपने मन में रखा। एक बार श्रील प्रभुपाद शिष्यों के साथ बैठे हुए और उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि एक्चुअली मैं तो खाली स्वप्न देखता हूं, असली सेवा तो आप लोग करते हो। आई सिंपली ड्रीम बट यू आर ऑल हैंड्स ऑन डूइंग द सर्विस। तो जयद्वेत महाराज थे उन शिष्यों में बैठे हुए, तो उन्होंने प्रभुपाद को कहा कि यस प्रभुपाद, यू सिंपली ड्रीम बट योर ड्रीम इज लाइक द ड्रीम ऑफ महाविष्णु। तो महाविष्णु वो भी ड्रीम करते हैं लेकिन उनके ड्रीम में पूरी सृष्टि की रचना होती है, एंड वी आर फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ योर ड्रीम श्रील प्रभुपाद। जब मैं कुछ साल पहले रशिया गया था प्रीचिंग के लिए तो वहां पर एक भक्त ये एक इंसिडेंट बता रहे थे कि जब केजीबी कम्युनिस्ट का वहां पर राज्य था तो बहुत मुश्किल था बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना रशिया में, छिप छिप के बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर ब्रह्मचारी, वो कपड़े वपड़े दूसरे पहनकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो कुछ गुंडे वो इस ब्रह्मचारी को मारना शुरू किए रास्ते पर। तो एक व्यक्ति चलते हुए उन्होंने देखा कि तीन चार गुंडे मार रहे हैं इनको, तो वो बीच में आए और उन्होंने इनको बचाया। बहुत हट्टे कट्टे शक्तिशाली थे, तो ये केजीबी के थे जिन्होंने बचाया। अगर आपको पता है केजीबी, जो कि हाथ धोकर इनके हरे कृष्ण के पीछे पड़े हुए थे, तो केजीबी एजेंट ने बुक डिस्ट्रीब्यूटर को इन गुंडों से बचाया। तो जैसे ही बुक डिस्ट्रीब्यूटर अब बच गए, तो इन्होंने देखा कि अरे भाई इसको बुक देना चाहिए, तो वो पीछे पीछे, अब ये केजीबी एजेंट जान गए कि ये तो हरे कृष्णा वाला है, इससे तो मेरे को दूर रहना है, इसको तो मुझे पकड़ना है, लेकिन इसको मैंने बचा लिया है तो इसको मैं छोड़ दूंगा, लेकिन दूर रहूंगा इससे। तो वो बुक डिस्ट्रीब्यूटर पीछे पीछे केजीबी एजेंट के बुक लेने के लिए, बुक लो, अरे नहीं नहीं आप दूर हटो, कोई मेरे को देख लेगा तुम्हारे साथ तो मेरी नौकरी जाती रहेगी, नहीं, बुक लो। बोला ठीक है, दे दो। ये हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर भी बहुत माहिर, तो जिन्होंने जिस केजीबी एजेंट ने इनको बचाया, उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी किया और डोनेशन भी लिया उनसे। ऐसे नहीं दिया गिफ्ट, डोनेशन भी दिया उनसे। फिर ये केजीबी एजेंट वो बुक लेकर अब वो पढ़ना शुरू किए, सीक्रेटली पढ़ना शुरू किए, तो ऐसा परिवर्तन इनके अंदर होना प्रारंभ हुआ कि अब बाकी केजीबी एजेंट इनके ऊपर नजर रख रहे थे कि ये कुछ अलग व्यवहार हो रहा है इनका, ये ज्यादा सात्विक बन रहे हैं। तो अब ये इतना कन्विंस हो गए प्रभुपाद की वो एक पुस्तक पढ़कर कि ये मॉस्को से एस्केप किया अपने आप को और वेस्ट जर्मनी गए और वेस्ट जर्मनी के इस्कॉन के मंदिर को ज्वाइन कर लिया इन्होंने और वहां पर टेंपल प्रेसिडेंट बन गए। तो इस उदाहरण से क्या समझ में आ रहा है, उन्होंने एक वैष्णव सेवा की तो भगवान ने उनको कितनी बड़ी सेवा दी, टेंपल प्रेसिडेंट बना दिया। तो इस्कॉन में ऐसा ही होता है, सर्विस बिगेट्स मोर सर्विस। बाहर की संस्थाओं में क्या होता है कि आप सेवा करो, फिर आपको क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए, है ना। इस्कॉन में आप हफ्ते भर सेवा करो, फिर आपको संडे दिया जाता है। क्यों, संडे में ज्यादा बिजी रहते हैं, संडे फीस्ट और ये सेवा। तो इस्कॉन में कोई सेवानिवृत्ति नहीं है, कोई रिटायरमेंट नहीं है। आप जितनी सेवा करोगे उसका रिजल्ट क्या होगा, सर्विस इंचार्ज आएंगे, अरे ये बहुत सिंसियर लगता है, चलो इसको और सेवा देते। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको सिंसियर नहीं होना है, बिकॉज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस द रिवॉर्ड फॉर सर्विस इज मोर सर्विस। सर्विस गिव्स बर्थ टू मोर सर्विस। तो यदि हमें जितनी ज्यादा सेवाएं मिल रही हैं इस इस्कॉन संस्था में, तो समझना चाहिए कि हमारा चैंटिंग अच्छा हो रहा है। और अगर हमको कोई सेवा ही नहीं दे रहा है कुछ, या कोई सेवा ही नहीं है हमारे लिए, तो समझना चाहिए कि चैंटिंग गड़बड़ है। क्योंकि चैंटिंग का मीनिंग क्या है, हे राधा मदन गोपाल मुझे आपकी सेवा में लगाइए। तो ये अर्थ है हमारे चैंटिंग का। तो अगर हमको ज्यादा से ज्यादा सेवाएं मिल रही हैं, तो ये समझना चाहिए कि हमारा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये अब गोविंद राज उदाहरण दिए सुमित्रा देवी का, कि सुमित्रा देवी जो कि सर्विस पर्सोनिफाइड थी इन तीनों रानियों में, उन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जो कि राम और भरत के सेवक बने। सर्विस एटीट्यूड बिगेट्स मोर सर्विस एटीट्यूड। पांचवा लेसन अब कैकेयी को लेकर है। तो कैकेयी का गुणगान किया हुआ है और दुष्ट केवल मंथरा थी, कैकेयी में कोई विकार नहीं था। कैकेयी प्रभु श्री राम को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, इतना प्रेम कैकेयी करती थी प्रभु श्री राम से कि बचपन में प्रभु श्री राम सबसे ज्यादा कैकेयी के महल में दिखते, कौशल्या के महल में ज्यादा नहीं दिखते प्रभु श्री राम, कैकेयी के महल में ज्यादा दिखते प्रभु श्री राम। और जब राम सीता इनका विवाह हुआ तो विवाह के पश्चात सबसे पहले इन दोनों ने यदि किसी का आशीर्वाद लेने गए तो वो कैकेयी का था। और कैकेयी इतना प्रसन्न हुई सीताराम को अब दंपति के रूप में देखते हुए कि कैकेयी ने अपना महल उसी समय इनको दे दिया रहने के लिए, सीताराम को दे दिया। सोचो वो कैकेयी जो आगे चलकर 14 वर्ष वनवास इनको दिया, तो वो कैकेयी इतनी शुद्ध थी कि उसने अपना महल, वो अटैची लेकर बाहर आ गई अपने महल से कि ये पूरा महल। और महाराज दशरथ की सबसे प्रिय रानी कैकेयी थी, क्योंकि कैकेयी सबसे सुंदर थी और सबसे वो जवान थी, तो सबसे प्रिय रानी महाराज दशरथ की कैकेयी थी, क्योंकि छोटी भी थी तो इसलिए ज्यादा प्रेम उनसे करते थे। तो इसलिए सबसे आलिशान महल कैकेयी का बना के दिया था महाराज दशरथ ने। तो वो सबसे आलिशान महल कैकेयी ने सीताराम को दे दिया, और ऐसा नहीं कि कोई प्लानिंग वालिंग किया था। जैसे ही वो अभी आशीर्वाद मांगने आए कि अभी हमारा विवाह हुआ है आपका आशीर्वाद दीजिए, तो आशीर्वाद के साथ मैरिज गिफ्ट क्या, मेरा पूरा पैलेस। और फिर महाराज दशरथ को दूसरा महल बनाना पड़ा, वो दूसरी स्टोरी है। तो इतना प्रेम कैकेयी का, तो कैकेयी की ये मति क्यों मारी गई, ये गोविंदराज कहते हैं मंथरा। इसलिए उसको वो कहते हैं कुमंथरा। एक अयोध्या में ये कुमंथरा और एक सुमंथरा, ये दो थे। तो इसकी जो मंत्रणा थी ये मंथरा, ये कैकेयी के पास आती है जब, और कैकेयी को समाचार ये मंथरा देती है किसका, कि राज्याभिषेक होने वाला है राम का। तो कैकेयी इतना प्रसन्न होती है कि अरे इतना अच्छा समाचार मंथरा तूने दिया है मुझे। तो सारे वो इनाम पहले मंथरा को देती है, मंथरा को लगता है यहां पे तो ये तो उल्टा पासा पड़ रहा है। फिर तो मंथरा को यहां पर वो कहा गया है कि असत संग, जो बुरा संग एक साधक का होता है। लेकिन किस प्रकार का बुरा संग, ऐसा नहीं कि कैकेयी ने कहीं जाकर किसी पापी व्यक्ति का संग किया था, नहीं, वही उसी की दासी। मंथरा कैकेयी की दासी थी। तो यहां पर वो कहते हैं कि जब हम भक्तों के साथ रहते हैं तो जब प्रजल्प भक्तों के समुदाय में जब प्रजल्प प्रारंभ होता है तो वो मंथरा का संग करना प्रारंभ हुआ है हमारा। और रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने ग्रंथ लिखा है मनस शिक्षा, तो मनस शिक्षा में रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं कि जो प्रजल्प है ये वैश्या के समान है, कि वैश्या वो बहुत सुंदर बातें करती है और सुंदर तरीके से सजती है, लेकिन उसके मन में उद्देश्य क्या है, कैसे पैसे ले लेना अपने ग्राहक से, कैसे उसे दूषित कर देना उसके मन को। तो ये जो प्रजल्प है ये उस वैश्या के समान है कि जब भक्त प्रजल्प का संग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पता है उसके साथ क्या हुआ, पता है इसके साथ क्या हो रहा है, ये सब प्रजल्प गॉसिप। तो ये बहुत अच्छा लगता है बोलने में सुनने में। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि वो उस वैश्या के समान है जो बोलने में दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन उसका उद्देश्य यही है कि आपकी भक्ति को कैसे वो चुरा ले। तो मंथरा ने यही किया। अब ये देखिए मंथरा ने कैसे कैकेयी की मति फेरी। वही समाचार मंथरा ने जब सुनाया कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तो कैकेयी जो कि अब तक शुद्ध थी, निर्मल हृदय की, इतना प्रसन्न हुई। लेकिन उसी समाचार को मंथरा अब तोड़ मरोड़ के गलत भ्रांत धारणाएं कैकेयी के मन में कैसे डालती है। वो कहती है कि अरे खुश हो रही तो तुम्हें तो दुखी होना चाहिए। तो कैकेयी दुखी, अरे मेरे राम राजा बनने वाले हैं, इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती। तो मंथरा कहती है कि नहीं, ये षड्यंत्र है। तो कैकेयी ने पूछा, षड्यंत्र किस प्रकार का षड्यंत्र? ये महाराज दशरथ का षड्यंत्र है, इसलिए देखो कि तुम्हारे पुत्र को तो भेज दिया तुम्हारे ननिहाल, है कि नहीं, भरत नहीं थे उस समय, तो तुम्हारे पुत्र को भेज दिया, भरत को भेज दिया, और तुरंत अब पीठ पीछे कौशल्या के पुत्र को राजा बना रहे। तो अब यहां पर जिस घटना में कोई सच्चाई नहीं है, उस घटना में एक झूठ को सच प्रस्तुत कर मंथरा ने कैकेयी की मति फेरी। इसे कहते हैं प्रजल्प, कि जब झूठ को सच साबित कर अपनी मति को जब वो प्रजल्प फेरता है, तो वो है मंथरा का संग। जैसे बंबई में एक स्टूडेंट, वो केवल 17-18 साल का, एकदम जैसे कि एंथुजियास्टिक कोई विद्यार्थी होता है, तो मंदिर में आता था, सेवा करता था, मॉर्निंग प्रोग्राम, 16 माला सब स्ट्रिक्टली करता था, और वो किसी कोर्स के लिए बैंगलोर गया और वहां पर ऐसे भक्तों के साथ संग किया जो केवल वैष्णव निंदा करते थे। बैठकर केवल क्या करते थे कि इस्कॉन के ये डिवोटी के साथ ये हुआ, उस डिवोटी के साथ ये हुआ। तो ये 17-18 साल का ये विद्यार्थी जब वापस आया, तो इतना प्रदूषित वापस आया, ये इतना प्रदूषित वापस आया कि जैसे कि कोई साफ सुथरा व्यक्ति जिसको किसी गंदे नाले में फेंक दिया और वहां से वो बाहर आया। ही वॉज सो कंटेमिनेटेड। तो ये है मंथरा का संग, जैसे कैकेयी ने मंथरा का संग किया। और तो इसमें हम ये कह सकते कि कैकेयी का क्या दोष था? कैकेयी का दोष केवल इतना था, सबमिसिव हियरिंग। कैकेयी ने बैठ के दशरथ और प्रभु श्री राम की निंदा, कौशल्या की निंदा सुनी, बस। तो कई बार हमको लगता होगा कि अरे मैं तो किसी की निंदा नहीं कर रहा ना, वो कर रहा है, वो वैष्णव की निंदा कर रहा है ना, मैंने तो नहीं कहा ना। लेकिन अगर हम बैठ के सुन भी रहे हैं वैष्णव की निंदा, तो हमारा हाल कैकेयी की तरह होगा। और फिर आगे चलकर रामायण में सबसे ज्यादा गाली किसको मिली? मंथरा को नहीं मिली, कैकेयी को मिली। सारे ना आलोचना, लांछन सब कैकेयी के ऊपर पड़े। सो दिस इज द डेंजर ऑफ लिसनिंग टू वैष्णव निंदा। स्पेशली एक भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर के शिष्य हुए भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, तो उन्होंने हमारे इस्कॉन मूवमेंट के ऊपर एक कमेंट किया कि इतना सुंदर है ये इस्कॉन मूवमेंट, लेकिन खाली एक ही चीज जो मुझे खाती रहती है जब मैं देखता हूं, दैट यू इस्कॉन डिवोटीज आर नॉट फियरफुल ऑफ वैष्णव अपराध. आप लोगों के अंदर वो वैष्णव अपराध करने का डर ही नहीं है, वैष्णव निंदा करने का डर ही नहीं है आपके अंदर, और उसके वजह से मैं भयभीत रहता हूं. भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज बोले, आई एम अफ्रेड ऑफ यू. तो कैकेयी का दोष यही था कि उसने बैठकर मंत्रा द्वारा दशरथ, राम और कौशल्या की निंदा सुनी, और फिर अब देखिए कैसी मति फिरी कैकेयी की, कि कैकेयी अब मंत्रा का गुणगान करने लगी. तो ऐसा होता है प्रजल्प सुनने से क्या होता है, साधारणतः ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है. ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि यदि मैं गलत हूं तो मैं अगर चार लोगों को गलत साबित करूंगा तो मेरे से फोकस हट जाएगा, है ना. तो लोग फिर वो जो चार गलत हैं उनके ऊपर फोकस डालेंगे, मुझ पे फोकस नहीं डालेंगे. और क्योंकि मैं उनको गलत साबित कर रहा हूं इसलिए मुझे तो कोई गलत बोल ही नहीं सकता फिर, क्योंकि मैंने साबित किया. तो कैकेयी के साथ भी यही हुआ कि मंथरा जो कि दशरथ, राम और कौशल्या की निंदा सुनी, तो वो मंथरा की निंदा करने के बजाय मंथरा का गुणगान करने लगी. और कैकेयी मंथरा से कहती है कि इस पूरे अयोध्या में यदि मेरा कोई हित चिंतक है तो मंथरा तुम हो. अब मंथरा वो कैसी स्त्री थी, कुबड़ी, हंचबैक्ड, एकदम कुरूप, सबसे कुरूप यदि अयोध्या में कोई थी तो वही थी मंथरा. और वो ऐसी थी कि बहुत से अयोध्या वासियों को तो पता भी नहीं था. तो जब प्रभु श्री राम को वनवास मिला तो जब इन्वेस्टिगेशन हुआ कि कहां से शुरुआत हुआ ये सब, तो लोग कहे कि कोई मंथरा करके दासी है, तो लोग चर्चा कर कौन है ये मंथरा. बहुतों को तो पता भी नहीं था कौन है मंथरा. तो ये ऐसी कुरूप स्त्री, और कैकेयी मंथरा की सुंदरता का बखान कर रही है. देखिए, अ पर्सन कैन बी सो मच इल्यूजन्ड बाय प्रजल्पा दैट कैन स्टार्ट ग्लोरिफाइंग द बैड क्वालिटीज ऑफ द अदर पर्सन हु इज डूइंग प्रजल्पा. तो कैकेयी क्या कहती है मंथरा को कि ये जो तुम्हारे पीठ के ऊपर कुबड़ है ये तुम्हारे सुंदरता का सबसे महीम अंग है. ये कैकेयी बोलती है, और उसके साथ एक उदाहरण भी देती है. ये उदाहरण सुनिए आप. कैकेयी कहती है कि ये जो तुम्हारे पीछे जो कुबड़ है इसे मत समझो कि ये बहुत कुरूप है. ये पता है कैसे दिख रहा है, जैसे कि बहुत सुंदर कमल का पुष्प है जो हवा के वजह से टेढ़ा हो गया है. सुंदर कमल का पुष्प शाम के समय जब हवा बहती है तो कभी कभी थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, तो वैसे ही दिख रहा है कई मंथरा तुम्हारे पीठ पे ये. और फिर कैकेयी ने अपने गले के कई मोतियों के हार निकाले और उसके कुबड़ को सजाना शुरू किया. दिस इज द रिजल्ट ऑफ हियरिंग प्रजल्पा. और फिर इतना ही नहीं, तो अब कैकेयी मति पूरी फिर गई है उसकी. तो कैकेयी ने कहा अभी मैं जाती हूं, दशरथ मजा चखाती हूं सब कुछ. तो मंथरा कहती नहीं नहीं नहीं, अरे बुद्धि से काम किया करो, तुम्हें महाराज दशरथ के पास जाने की क्या जरूरत है, वो स्त्री लंपट है, वो आएंगे तुम्हारे पास, तुम जाओ कोप भवन में. तो ये मंथरा ने पूरा डिक्टेशन किया फिर कैकेयी को, क्योंकि कैकेयी तब तक एकदम वो जिसको कहते हैं ना सिंपलटन, वैसी थी वो. तो मंथरा ने जब कहा कि कोप भवन में जाओ और कोप भवन में एकदम क्रोधित अवस्था में बैठी रहो, लाइट वाइट बंद कर कर सब, सब बाल वाल खोल दो और गुस्से में पलंग पे नहीं नीचे, तो सब पोजीशन क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए, लाइटिंग अरेंजमेंट सब कुछ मंत्रा मंत्रा का डिक्टेशन था ये। तो वहां पर दशरथ अपने दिन का पूरा ऑफिस आवर्स पूरा करने के बाद सबसे पहले कैकेयी से मिलने आते, तो अपने वो देखा कि कैकेयी महल में नहीं है, तो पता लगाया कैकेयी कहां पर है, कोप भवन में। तो महाराज दशरथ ने जैसे कोप भवन में क्या कर रही हो, अरे भाई मेरे को तो समाचार सुनाना इतना अच्छा, तो कोप भवन में क्या कर रही हो। कोप भवन जानते हैं आप, पहले के जमाने में ऐसे भवन होते थे जहां पर जाने से समझ में आ जाता था कि आज महारानी गुस्से में है। आजकल तो पूरा फ्लैट ही कोप भवन बना रहता है कि कहीं पर भी जाओ, ड्राइंग रूम में, किचन में, सब जगह कोप भवन ही बना रहता है। लेकिन पहले ऐसा ऐश्वर्य था कि यदि गुस्सा करना है, दिखाना है, तो अलग से सबके सामने नहीं होना चाहिए, वो भवन अलग ही होता था। तो यहां अब कैकेयी वहां पर कोप भवन में, तो महाराज दशरथ थोड़ा डरे हुए से कि क्या हुआ है, इतना गुस्से में क्यों है। तो जब महाराज दशरथ वहां पहुंचे तो कैकेयी पीठ कर बैठी हुई थी, पोजीशन पे बिठाया था मंथरा ने कि महाराज दशरथ एंट्री करेंगे तो पीठ दिखनी चाहिए, तो पीठ करके। तो महाराज दशरथ कैकेयी एक तो नीचे बैठी है, बाल खुले हुए और पीठ कर अंधेरा ये सब, तो क्या हुआ क्या। तो एक तरफ से महाराज दशरथ जब देखने का प्रयास किए कैकेयी के चेहरे को, तो कैकेयी यहां इस तरफ चेहरा कर लिया, फिर इस तरफ कैकेयी ने उस तरफ चेहरा कर लिया। तो महाराज दशरथ फिर चिल्लाकर बोले कि कौन है जिसने तुम्हारा ये हाल किया है, उसका नाम बस पहला अक्षर बता दो, उसको मैं खत्म कर दूंगा। देखो तो यहां पर महाराज दशरथ की भी गलती बताई गई है कि महाराज दशरथ, एक तो महाराज दशरथ की यह गलती बताई है कि वो जो दो वरदान दिए थे कि जो भी मांग लो, जो भी तुम्हारी इच्छा है, तो रामायण में बताया गया है कि कभी भी ऐसा ओपन ऑफर नहीं देना चाहिए पत्नी को, बताया गया है रामायण, बहुत पछताना पड़ता है आगे। तो यहां पर भी पहला अक्षर बताओ, उसको खत्म कर दूंगा मैं। तो फिर कैकेयी वो रोने लगी, सब नाटक था, वो मंथरा द्वारा सब ग्लिसरीन वगैरह लगाया था, सब नाटक था रोने होने का। तो फिर रोते हुए गुस्से में कि मुझे तो केवल एक इच्छा पूरी करनी है, वो अगर पूरी कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो फिर जाओ बाहर, यहां अकेला छोड़ो मुझे। अरे कौन सी इच्छा, बोलो बोलो, एक क्या, 100 इच्छा तुम्हारी पूरी करूंगा महाराज दशरथ, ये सब। तब फिर उसने वो जो दो वरदान तुमने दिए थे वो पूरा करोगे, दो वरदान, अरे हाँ वो दो वरदान याद भी नहीं था महाराज दशरथ को, अरे मांगो मांगो, क्या मांगना है तुम्हें। तब फिर उन्होंने कैकेयी ने ये डाला, दो वज्रपात महाराज दशरथ के ऊपर कि कल मेरा बेटा, उसका लैंग्वेज चेंज हो गया था, कल तक मेरा बेटा राम था, अब मेरा बेटा भरत हो गया, मेरा बेटा राजा बनेगा, और दूसरा वरदान मुझे चाहिए कि राम को 14 वर्ष वनवास। जब महाराज दशरथ ने ये दूसरा सुना, पहले तक ठीक थे वो, लेकिन जब दूसरा सुना कि राम को 14 वर्ष वनवास, तो स्तब्ध रह गए। जैसे होता ना कई बार, इतना दुख आ जाता है कि रिएक्ट करने का समय नहीं मिलता आपको। एक ब्रह्मचारी मुंबई के हमें बता रहे थे एक बार कि उन्होंने अपनी आंखों से ये दृश्य देखा कि एक व्यक्ति, वो पटरी क्रॉस कर रहा था लोकल ट्रेन बॉम्बे में, और वो कुछ तो उसका पैर अटक गया, वो गिर गया, और ट्रेन उसके दोनों पैरों को काट के चली गई। तो ये ब्रह्मचारी ने अपने आंखों से देखा इस व्यक्ति के दोनों पैर कट गए, अलग हो गए, उसके कमर के नीचे से कुछ नहीं था। उस अवस्था में यह व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर जंप किया और प्लेटफॉर्म पर वो अपने आप को ऐसे बिठा लिया। तो ये ब्रह्मचारी जब देख रहे थे कि इतना सब कुछ होने के बाद एक चीख नहीं इसके मुंह से, इसके दोनों पैर गिरे हुए पटरी पे, क्योंकि वो इतना सडन शॉक था कि उसको पेन महसूस नहीं हुआ, और दो मिनट बाद इतनी जोर से चिल्लाना शुरू किया फिर उसने। तो वही हाल महाराज दशरथ का कि दो मिनट तक वो इतना स्तब्ध रहे कि जैसे किसी ने उनके अंग काट दिए तो सडन वो पेन का अनुभव नहीं होता है। और फिर महाराज दशरथ जो विलाप करना शुरू किए, सब कुछ उनका मुकुट गिर गया, सारे आभूषण गिरने लगे, और महाराज दशरथ फिर वो कहे कैकेयी से कि यदि मैंने अपने जीवन में कोई सबसे बड़ा पाप यदि किया है तो तुमसे विवाह करके किया है। ये अब कैकेयी को बोल रहा है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक राजा थे तो राजनीति जानते थे, तो उन्होंने तीन तरीके से कैकेयी को समझाने का प्रयास किया। पहले थ्रू नेगोशिएशन, थ्रू लॉजिक एंड थ्रू लव। तो नेगोशिएशन में वो कैकेयी से कहते हैं कि ठीक है, तुम चाहती हो ना कि भरत राजा बने, भरत को राजा में बना दूंगा, लेकिन राम को क्यों वनवास भेजना है, राम को रहने दो यहीं पे। तो ये था, नेगोशिएट कर रहे थे वो। कैकेयी ने कहा नहीं, तुमने वचन दिया है कि तुम मैं जो मांगूंगी पूरा करोगे नहीं, तो फिर अब लॉजिक ये कि दशरथ पूछते हैं कि मुझे बताओ कि राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, राम को क्यों दंडित कर रही, आज तक क्या राम ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, किसी के साथ कुछ गलत किया राम ने? अरे निष्पाप है राम, तो क्यों दंड मुझे दो, मैंने गलती की तुम्हें दो वरदान दिए, राम को क्यों दंडित कर रहे? तो कैकेयी इतना निष्ठुर हो चुकी थी, ये देखिए मंथरा का संग, इतना निष्ठुर हो चुकी थी कि नहीं, राम को वनवास। फिर लास्ट जो उन्होंने पैंतरा अपनाया कि पूरे अयोध्या में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कैकेयी तुम हो कि जो प्रभु श्री राम से सबसे ज्यादा प्रेम करती हो, कहां गया तुम्हारा प्रेम, वेर इज दैट लव फॉर लॉर्ड राम फॉर विच यू आर सो फेमस इन द होल ऑफ अयोध्या। कम से कम उस प्रेम की तो लज्जा रखो। तो ये तीसरा तरीका, लेकिन कैकेयी वो टस से मस नहीं हुई। तब फिर दशरथ वो कहते हैं कि कैकेयी तुम उस शिकारी के समान हो जो हिरण को मारने से पहले बांसुरी बजाता है, तो तुमने अपने सौंदर्य से और अपनी वाणी से तुमने मुझे अपने वश में किया और अब मेरे ऊपर ये तीर चला रही हो, तो तुम उस कपटी शिकारी की तरह हो जो छिप के बांसुरी बजाता है और आकृष्ट करता है लेकिन फिर मारता है। और दूसरा उदाहरण देते हैं कि तुम उस मछुआरे के समान हो जो कि वो कांटा फेंकता है और उस कांटे में खाद्य पदार्थ लगाकर मछली को पकड़ने के लिए, लेकिन मछुआरा करता क्या है कि मछली को पहले खाने देता है, तुरंत नहीं खींचता मछली को। तो वैसे ही तुमने मेरे साथ प्रेम जताया इतने वर्षों तक, मुझे वो कांटे पर से वो खाद्य पदार्थ खाने दिया اور اب میرے گلے میں وہ کانٹا اٹکا رہی ہو. تو یہاں پر گووند راج وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ساودھان ہونا چاہیے کئی بار ان لوگوں سے جو ہمارا زیادہ گنگان کرتے ہیں, جیسے کیکیی اور دشرت کا کیا گھنشٹ سمبندھ تھا, اور واستوک روپ میں یدی دشرت مہاراج کا ود ہوا تو کیکیی کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں جیسے چیتن چرتامرت میں ادھارن ہے کہ رام چندر خان وہ چیتنیہ مہاپربھو کو پرساد کے لیے بلاتے تھے اور کھلا کھلا کے پھر بولتے کتنا کھا رہا ہے دیکھ سنیاسی. تو یہ ہے بھوتک سنسار, جو جتنا آپ کا گنگان کریں گے ہو سکتا ہے انہی کے اندر مایا دیوی بیٹھ کر آپ کے اوپر وہ پھولوں کے ہار کے بدلے چپلوں کا ہار پہنوائے گی. Those people who glorify you, worship you the most, will actually crucify you first. تو یہ مہاراج دشرت بولتے ہیں یہ کیکیی ایسی تھی. اگر ہم آج کا ادھارن لیں تو یہ جو کرکٹ کا گیم ہوتا ہے نا, اکثر دیکھا جاتا ہے کہ آؤٹ کون ہوتا ہے بیٹسمین, جو زیادہ چوکا چھکا مارتا ہے نا کئی بار اسی اوور میں آؤٹ ہوتا ہے وہ. اور یہ کرکٹ میں ایک اسٹریٹجی ہے کہ ہم لوگ جب ہمارے ٹینس کا اور کرکٹ کا ٹیمز جاتا تھا ایک ساتھ, تو وہ بتاتے تھے کہ جو بولر ہوتا ہے وہ کئی بار ایک دم سمپل ایزی بالز ڈالتا ہے بیٹسمین کو بھرمت کرنے کے لیے کہ مار تو چوکا مار میرے اوور میں, تو چوکا چھکا. تو ایک اوور میں اگر وہ چوکا چھکا مار رہا ہے بولر جان بوجھ کے ڈھیلا بولنگ کرتا ہے, کیونکہ تو دو بال اس نے ڈھیلا ڈالا جس کے وجہ سے چوکا چھکا مارا بیٹسمین نے, پھر تیسرا بال میں وہ جانتا ہے کہ ابھی وہ بیٹسمین جو ہے وہ اٹینٹیو نہیں ہے اتنا, تب پھر وہ اپنا پورے فورس سے ڈالتا ہے اور اس کا وکٹ اڑاتا ہے کلین بولڈ. بولا مایا دیوی بھی ویسے ہی کرتی ہے کہ پہلے ایک دم ڈھیلا بولنگ ڈالے گی, مار چوکا مار چھکا مار. تو ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کیا پرگتی میری ہو رہی ہے نا, دیکھو چوکا مارا میں نے چھکا مارا, اور کئی بار پورا اوور چوکا چھکا ہم مار رہے ہیں لیکن وہ بولر واپس آنے والا ہے تو ہم کو لگتا ہے ارے ہاں اسی کے لاسٹ اوور میں میں نے مارا تھا چوکا چھکا, یہ واپس آیا تو یہ تو اتنا ڈھیلا بولنگ کرتا ہے. تو یہاں پر وہی ہو رہا ہے کہ جس پر سب سے زیادہ وشواس مہاراج دشرت کا تھا کیکیی, اسی کیکیی نے دشرت مہاراج کو کلین بولڈ کیا. دس از دا نیچر آف بیڈ ایسوسیشن, یہ ہے پرینام غلط سنگ کرنے کا. اور غلط سنگ گووند راج کہتے ہیں کہ سنگ کیسا کیا کیکیی نے منترا کا, فزیکل سنگ تو پہلے بھی کرتی تھی لیکن اس ٹائم اس نے شرون کیا, سبمیسیو ہیئرنگ. تو سنگ برا کیسے پرارم ہوتا ہے, جب ہم وہ پرجلپ سننا پرارم کرتے ہیں, ویشنو کی نندا سننا پرارم کرتے ہیں, وہ ہے غلط سنگ اور وہ ہے منترا کا پربھاؤ ہمارے اوپر. تو یہ پانچواں لیسن, ففتھ لیسن وہ سکھا رہے ہیں کہ کیسے ایک شدھ سادھک منترا جیسے کمنترا جیسے غلط سنگ میں آ کر وہ اپنے جیون میں پربھو شری رام کو بہشکرت کر سکتا ہے. اور پھر کیکیی کی بھاشا کیا رہی, میں اور میرا بھرت, میں آئی می مائن. تو جب سادھک کے جیون میں آئی می مائن مینٹالٹی بنتا جاتا ہے, میں اور میرا, میرا پروجیکٹ, میں, میرے شیشیا, میرے کاؤنسلی, میرا پروجیکٹ, میری سیوا, سب کچھ میں, میرا, तो समझ लेना चाहिए कि ये जो मंथरा है इसका प्रभाव हो रहा है। और फिर अंतिम शिक्षा, सिक्स्थ लेसन, वो प्रभु श्री राम से, कि रामचंद्र जी को जब ये बताया गया कि आपको 14 वर्ष वनवास जाना है, तो सोचिए कि यहां पर बाकी लोग जो इतना क्रोधित हो रहे हैं कैकेयी के ऊपर, तो सबसे ज्यादा अधिकार किसको था क्रोधित होने का? रामचंद्र जी को। अफेक्टेड पार्टी कौन है? बाकी तो गुस्सा होके अयोध्या में रहने वाले हैं, वनवास जाना है तो किसको जाना है? रामचंद्र जी को। तो वो बोलते थे आप लोग तो गुस्सा होके तो आप तो यहां पे खीर पूड़ी खाने वाले हो कल से, कंदमूल तो मेरे को 14 वर्ष खाना है अभी। तो जो अधिकृत था कैकेयी के ऊपर सबसे ज्यादा क्रोधित करने के लिए, उन्होंने तो बिल्कुल क्रोध नहीं किया, वो है प्रभु श्री राम। टोटली टोटली अनअफेक्टेड। तो गोविंदराज कहते हैं कि इसमें प्रभु श्री राम जो टोटली अनअफेक्टेड थे, वो बताते हैं कि वर्णन करते हैं कि जब रामचंद्र जी जा रहे थे कैकेयी की कोप भवन में, बुलाया था महाराज दशरथ के अंदर, वो तो किसी हाल में नहीं थे बोलने के लिए प्रभु श्री राम को, तो कैकेयी ने बुलवाया कि बुलाओ यहां पे। तो रामचंद्र जी जब अपने भवन से कोप भवन की ओर चलते हुए गए, तो अयोध्या की नगरी को देखते हुए, कि क्योंकि दूसरे दिन राज्याभिषेक है, तो रामचंद्र जी देख रहे हैं कि तैयारियां चल रही हैं उनके राज्याभिषेक की। अब अगर हम होते उस जगह पर, हम मानो अपने घर से चलते हुए जा रहे हैं रास्ते में और सब हमारे राज्याभिषेक की तैयारियां कर रहे हैं, तो कैसा लगेगा हमें? हम थोड़ा अच्छी से माला बनाओ, हमको ऐसा लगेगा तो अच्छे से काम करो, मेरे लिए सब कुछ हो रहा है। तो कहा गया है कि रामचंद्र जी, वो जब देखा उन्होंने उनके लिए तैयारियां चल रही हैं, कोई अफेक्ट नहीं उनके लिए, ये नहीं कि उससे बहुत प्रभावित हुए, और वो सुनने के बाद उसी रास्ते से वापस भी आए वो, और बाकियों को कोई खबर नहीं थी, वो तो तैयारियों में लगे हुए थे। तो ऐसा नहीं कि रास्ते में आते हुए अब देख रहे हैं कि अरे छोड़ो अभी क्या कर रहे हो तुम, तुमको पता ही नहीं है, जाओ ये सब दुकान बंद करो भाई, रोना धोना होने वाला है नहीं। तो जैसे वो जिस अवस्था में थे जाते समय, आते समय भी उसी अवस्था में, टोटली अनअफेक्टेड। और इतना ही नहीं, गोविंदराज कहते हैं ये सबसे सुंदर रामचंद्र जी का गुण, कि वो फिर जो तैयारियां कर रहे थे उनके साथ बैठकर तैयारियां करने लगे, किसके लिए? भरत के राज्याभिषेक के लिए। तो सारे अयोध्यावासी बोले आप क्यों बैठ रहे हैं यहां पे? बोले नहीं नहीं नहीं, तैयारी अच्छी से होनी चाहिए कल के राज्याभिषेक की, ये नहीं पता कि किसके राज्याभिषेक की। देखिए ये प्रभु श्री रामचंद्र का जो गुण है, वो हमारे आंखों में आंसू ले आता है। जब हमारे साथ कोई नाइंसाफी होती है ना, हम लोग कैसे आग बबूला हो जाते, मेरे साथ उसने ऐसा क्यों बोला, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं बोला, ऐसा क्यों बोला और ऐसा क्यों नहीं बोला, जो बोलना चाहिए था वो नहीं बोला और जो नहीं बोलना चाहिए था वो बोला। कितने बार हम डिवोटी कम्युनिटी में, हमारे साथ मेरे साथ नाइंसाफी हुई, मैं नहीं रहूंगा, मैं कभी नहीं आऊंगा इस मंदिर में, मैं इस आश्रम में नहीं रहूंगा, मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया गया। और यहां पे देखिए रामचंद्र जी, कि जिनके साथ, जो कि निष्पाप थे, एक तो हम निष्पाप तो हैं नहीं, और उसके ऊपर अगर हमारे साथ कुछ हो जाए ऐसी नाइंसाफी, तो क्या हमारी प्रतिक्रिया रहती? तो प्रभु श्री राम ये नहीं कि भरत तेरे को मैं देखता हूं भी, ये नहीं कि तेरे वजह से ये सब कुछ हो रहा है, कि मैं सबको जाके, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे साथ अगर कुछ बुरा होता है तो हम सबसे पहले चार लोगों को लेके बैठते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, पता है क्या, कैके ने क्या किया, अरे आप लोग ये सब बना, कैके को जाके धरना करो, उधर मारो उसको। तो रामचंद्र जी ने कोई ग्रुप्स नहीं बनाए कि चलो मैं अपना ग्रुप फॉर्म करता हूं यहाँ पे और उसको बाहर निकालता हूं, दशरथ को, कैकेयी को, इनको सबको, सब शक्ति थी उनके पास, पूरी अयोध्या उनके साथ ही थी, आराम से वो अगर चाहते तो, वो अगर चाहते तो भरत को एंट्री नहीं मिलती थी अयोध्या में, वो अगर चाहते तो कैकेयी को कौन कहां किडनैप कर कर ले जाता उस रातों रात, वो मंथरा का तो क्या हाल होता कुछ पता नहीं किसी को, उसको तो जिंदा गाड़ देते कोई। लेकिन प्रभु श्री राम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उल्टा वो उन सब अयोध्या वासियों के साथ बैठकर तैयारियों में जुट गए भरत के राज्याभिषेक के लिए। और वो इसलिए, देखो क्या फाइनर पॉइंट्स वो बताते हैं, वो इसलिए कि प्रभु श्री राम सोच रहे थे कि मुझे तो कल वनवास जाना है, तो मैं भाग नहीं ले पाऊंगा भरत के राज्याभिषेक में, तो कम से कम मैं अपनी सेवा तो कर लूं आज। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो रामचंद्र जी ने हमें सिखाया क्या, हाउ टू हैंडल इनजस्टिसेस इन आवर लाइफ। एक साधक के जीवन में जब नाइंसाफी होती है, जो हमारे वर्जन के अनुसार नाइंसाफी, तो उसको कैसे हमें हैंडल करना है, ये प्रभु श्री राम सिखा रहे हैं। और एक और लेसन इसके अंदर ही वो ये है कि प्रभु श्री राम अपने उदाहरण से हमें ये सिखाए दैट इन दिस मटीरियल वर्ल्ड विथ एवरी गुड न्यूज फॉलोज अ बैड न्यूज। गुड न्यूज क्या था प्रभु श्री राम के लिए, उनका राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन उसके साथ बैड न्यूज क्या आया कि वो सब भूल जाओ, आपको 14 वर्ष वनवास। तो जब भी इस भौतिक संसार में हमारे लिए गुड न्यूज आए तो चौकन्ना हो जाना चाहिए, रामायण खोल लो। अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज ऑलवेज अ लल बिफोर अ स्टॉर्म, कि तूफान आता है ना, तूफान आने से पहले एकदम शांति का माहौल होता है। तो यहां पर प्रभु श्री राम ये बता रहे हैं दैट विथ एवरी गुड न्यूज कम्स अ बैड न्यूज एंड विथ एवरी बैड न्यूज ऑल्सो फॉलोज अ गुड न्यूज। अशाश्वतम ये भौतिक संसार, तो प्रभावित मत हो, अगर गुड न्यूज आए तो उसे प्रभावित मत हो, बैड न्यूज आए उससे भी प्रभावित मत हो। प्रभु श्री राम ने सिखाया कि कैसे अपने मर्यादा में रहो, इसलिए प्रभु श्री राम कौन है, मर्यादा पुरुषोत्तम, कि हमें देखना है कि इस भौतिक संसार में कौन सी स्थिति मेरे आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुकूल है, बस ये देखना है। एक मैं छोटी सी कहानी से सुबह की क्लास आज अंत करना चाहूंगा। ये हाल ही में मुझे एक ईमेल में कहानी आई, बहुत ही सुंदर कहानी है, छोटी सी है, हम साधकों के लिए बहुत उपयुक्त है। आप पता नहीं ये जानवर आपने देखे हैं क्या, पॉर्क्यूपाइंस। पॉर्क्यूपाइन एक ऐसा जानवर होता है जिसके पीठ, पूरे पीठ पर ऐसे नोकीले, जैसे सुइयां होती ना, सुइयां, नोकीली सुइयां, पता नहीं मराठी में तो कुछ वर्ड नहीं होगा, पॉर्क्यूप साया, समझ गए ना आप। तो ये जो एक ये कथा है कि अलास्का एक जगह है जहां पर बहुत बर्फ पड़ती है, अमेरिका में बहुत बर्फ पड़ती है, तो अलास्का में एक ऐसी बर्फीली सर्दी के मौसम में कुछ 8-10 पॉर्क्यूपाइंस, वो सर्दी के मारे वो थर थर कांप रहे थे। मतलब इतनी सर्दी थी, इतनी बर्फ थी कि उनसे सहन नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि एक युक्ति निकाली कि सब एक साथ आकर जुड़ जाए तो गर्मी पैदा होगी, तो हम सर्दी की वजह से मरेंगे नहीं। तो वो लोग सब एक साथ आ गए, एक साथ आकर एक दूसरे को कष्टा पकड़ लिया। लेकिन फिर हुआ क्या, क्योंकि उनके शरीर में वो सारे नीडल्स हैं ना, पाइन्स, तो वो एक दूसरे को लगने लगे, चुभने लगे। तो जब एक दूसरे को चुभने लगे तो वो फिर अलग हुए, बोले ये सहन नहीं। जैसे ही अलग हुए तो सर्दी, जैसे ही पास में आते तो वो चुभते, अलग होते तो सर्दी, पास में आते तो वो चुभता। तो करें तो क्या करें। तब तो उन्होंने डिसाइड किया कि अगर हम इसे सहन कर लेंगे, किसको, ये जो एक दूसरे को हमको ये निडल्स चुभ रहे हैं, इसको सहन कर लें तो ये सर्दी का मौसम चला जाएगा, नहीं तो ये नीडल्स हमें जान से नहीं मारेंगे लेकिन ये सर्दी हमें जान से मार डालेगी। तो भक्तों के संग में भी ऐसी स्थिति होती है। भक्तों के संग में हम एक साथ आने का प्रयास करते हैं तो बहुत चुभन होती है कई बार। ये भक्त का नीडल इधर लग रहा है हमको, वो भक्त का इधर लग रहा है, इधर से चुभन हो रही है। तो हम सोचते हैं चल बाहर निकलते हैं यहां से। बाहर जाते हैं तो बाहर का मौसम कैसा है, मटीरियल वर्ल्ड, जैसे प्रभुपाद ने कहा, इफ डिवोटी एसोसिएशन इज डिफिकल्ट फॉर यू, मटीरियल वर्ल्ड इज इम्पॉसिबल। तो जब बाहर जाते हैं तो बाहर तो निश्चित मरने वाले हैं उस मौसम में, उस माहौल में। तो फिर ये पॉर्क्यूपाइंस ने क्या सिखाया कि चाहे कितने भी नीडल्स हमको दूसरे भक्त चुभा रहे हों, लेकिन फिर भी हम एक साथ जुट होकर बाहर का जो जानलेवा वो सर्दी का मौसम है उससे बचकर अगर हम एक साथ संकीर्तन करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ तो हाँ, वो जो सुइयां हैं वो भक्तों के संग में हमको चुभेंगी यहां वहां, लेकिन कम से कम नींद नहीं आएगी, जप में नींद नहीं आएगी। मतलब हम सतर्क रहेंगे, हमारी साधना में सतर्क रहेंगे। सो इट इज बेटर टू बी प्रिक्ड इन वैष्णव एसोसिएशन देन टू डाई इन द कोल्ड एटमोस्फियर आउटसाइड इन द मटेरियल वर्ल्ड। दैट इज द लेसन फ्रॉम द स्टोरी ऑफ पॉर्क्यूपाइन। और वो प्रभु श्री राम ने अपने उदाहरण से सिखाया कि हां, जो कुछ उनके साथ हुआ वो सरासर नाइंसाफी थी, लेश मात्र भी प्रभु श्री राम की गलती नहीं। वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनके पास पूरी शक्ति, कई बार हमारे साथ नाइंसाफी होती है तो हमारे पास कोई शक्ति नहीं होती प्रतिरोध करने के लिए, इसलिए हम चुप बैठते हैं। यहां पर प्रभु श्री राम के पास पूरी शक्ति, जो कि शक्तिमान है, परम नियंत्रक हैं, सुप्रीम कंट्रोलर हैं, ये सब कुछ गुण होने के बावजूद उनके साथ जो कुछ हुआ उन्होंने उसे स्वीकार किया। और ऐसा नहीं कि मन को मारते हुए, लेकिन कैकेयी का गुणगान करते हुए, जब वो कौन था, वो निषाद राज, जब उन्होंने प्रभु श्री राम को पकवान बनाकर खिलाया और उन्होंने कहा कि 14 वर्ष आप इधर रहो, यहां के राजा बन जाओ, और उसके क्योंकि अयोध्या के पास ही था तो आप वन में भी रह रहे हो और कैकेयी का भी मान रख लिया और यहां पे आप एक राजा की तरह रहो। तो जब उसने प्रभु श्री राम के लिए ऐसे ऐसे पकवान बनाकर वो लाया तो उन्होंने, प्रभु श्री राम ने क्या कहा, ये मैं नहीं खा सकता। क्योंकि अगर ये मैं खाऊंगा तो कैकेयी के मन को ठेस पहुंचेगी, क्योंकि उसने मुझे वन का वास दिया है, और वन का वास मतलब वन का आहार, वन का वास मतलब वन की तरह, एक वनचारी की तरह रहना और वन का आहार खाना। तो वहां पर भी वो कैकेयी के विषय में सोच रहे थे। तो ये है प्रभु श्री राम का चरित्र, और इसलिए आज के श्लोक में जो सुखदेव गोस्वामी कहे हैं कि जब हम ऐसे तत्वदर्शी जैसे कि वाल्मीकि मुनि, गोविंदराज, इनके मुखारविंद से हम रामायण और प्रभु श्री राम की कथा सुनते हैं, कैसे श्रूयते सम्यक, सम्यक रूप से जब हम श्रवण करते हैं, तब जाकर जो रामायण में कहा गया है, तावत पापानि देहेस्मिन, जितने सारे पाप हैं हमारे शरीर में इतने जन्म जन्मांतर से, वो श्रीमत रामायणम नरई, वो फिर प्रभु श्री राम की इस कथा से सारे दूर होते जाएंगे और हमारे अंदर उनके प्रति शुद्ध प्रेम जागृत होगा। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय, श्रीपाद गोविंद राज की, शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, ताई गौर प्रेमानंदी,
श्रीमान शिक्षाष्टकम प्रभु की जय।
हरे कृष्ण। हाँ, तो एक और हम भक्तों के लिए खुशखबर है, और वो भी जानकीनाथ प्रभु, जानकी के जो नाथ हैं उनके सेवक, तो उन्होंने ये समाचार खुशखबर दी है कि आज हमारे इस मंदिर को 7 साल पूरे हुए हैं। रामनवमी के दिवस पर बरसाना महाराज आए थे, उद्घाटन हुआ था, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन कि रामनवमी के दिन बरसाना महाराज आए और वृंदावन कॉलोनी में हरे कृष्णा मंदिर की स्थापना हो, तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है, वो भी द्वारका में। जय श्री राधा मदन गोपाल मंदिर की, हरे कृष्णा।